ربانیت کے سلسلے میں آج ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے علم، علم، نالج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اے اللہ، میرے خلفاء پر رحم فرما. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون لوگ آپ کے خلفاء ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو میری سنت کی حفاظت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ علم والوں کی شان ہے. پہلی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو شاید اس سے پیارا ٹائٹل کسی علم والے کو نہیں مل سکتا کہ وہ اللہ کے نبیوں کا وارث بن جائے. ورثے کے لیے لوگوں کو جھگڑتے دیکھا، لیکن علم کا ورثہ پانے کے لیے لوگ اکثر غافل ہوتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پا رہے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کی دعا کہ جو لوگ سنتوں کی حفاظت کریں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کے نبی کی دعا کو پائیں گے اور یہ سچے عالم ہیں. اسی طرح ایک اور قول ہے کہ لیس شیئن اعز من العلم، علم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. بادشاہ عوام پر حکومت کرتے ہیں اور علم والے لوگ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ ابو الاسود کا قول ہے. کتنی گہری بات ہے نا، کہ بادشاہ جو ہیں وہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، جو چاہیں ان کے لیے قانون بنائیں، جو چاہیں مٹائیں، سزا دیں، پکڑ دھکڑ کریں، انصاف قائم کریں. لیکن وہ بادشاہ جو ہیں نیچے پڑ جاتے ہیں ان علم والوں کے آگے، جو حقیقت میں صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. اسی طرح عون بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو تو بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، اگر تم طالب علم نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرو، اگر تم ان سے محبت نہیں کر سکتے تو ان سے بغض نہ رکھو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سن کر کہا، سبحان اللہ، اس کو اللہ نے راستہ دے دیا. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ خود عالم بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو طالب علم تو بن سکتے ہیں نا، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں طالب علم بننے سے زیادہ عالم بننے کا شوق ہوتا ہے. اسی لیے اس نام سے ڈگریاں بھی لینا چاہتے ہیں. ہاں؟ پھر ہر ایک طالب علم بھی نہیں بن سکتا، تو کم از کم ان سے محبت تو کرو، بغض تو نہ رکھو. ہاں؟ کیونکہ ان سے محبت کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ گھر والے ہیں اگر تو ان کو تو پڑھنا پڑھانا اس لیے اچھا نہیں لگے گا آپ کا کہ پھر آپ ان کے کاموں میں کم وقت دے پاتے ہیں. کہا نہیں، محبت نہیں کر سکتے تو بغض تو نہ رکھو. یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کی طرف لوگوں کو کوشش کرنی ہے. اسی طرح علامہ شاطبی ہیں، انہوں نے لکھا کہ مستحب، مندوب، فرض اور مکروہ اور حرام کی جو تقسیمیں ہیں، تقرب اللہ اور تزکیہ نفس کے سلسلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اصل مقصود تزکیہ نفس ہے. جو چیز تزکیہ نفس میں مدد دے وہی اہم ہے، چاہے وہ مستحب ہو یا فرض. اور جو برائی کی طرف لے جائے وہ ممنوع ہے، خواہ وہ مکروہ ہو یا حرام ہو. یہ ان کی کتاب ہے الموافقات، اس میں ان کا یہ قول موجود ہے. اور دیکھا جائے تو کتنا خوبصورت قول ہے. عموماً دین کی بات ہوتی ہے نا، یا علم کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ یہ چیز وہ مستحب ہے، یعنی ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، مندوب ہے، فرض ہے، مکروہ ہے یا حرام. یعنی یہ مشکل اصطلاحات لوگوں کو اکثر دین سے دور کرتی ہیں. پھر کہیں مکروہ اور حرام کا فرق ہے. ٹھیک ہے، دین اپنی جگہ میں ان ساری بنیادوں پر قائم ہے. جو چیز فرض ہے اس کو آپ مستحب اور مستحب کو فرض کے درجے پر نہیں لا سکتے. اسی طرح جو حرام ہے آپ اس کو مکروہ سمجھ کے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنیاد نہیں ہے، یہ وہ منزل نہیں جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کے ذریعے جو چیز مطلوب ہے وہ تقرب اللہ ہے، اللہ کا قرب اور تزکیہ نفس. देखिए ये भी ज़हन में रखिए कि तकर्रुब इलल्लाह और तज़किया नफ्स का तरीका कार भी वही होना चाहिए जो सुन्नत से साबित है और कुरान पाक में जिसका जिक्र है, क्योंकि अगर तकर्रुब इलल्लाह का नाम लेकर गैर मसनून काम किए तो याद रखिए कि अगर हमने सुन्नतों की डोरियां काट दी तो फिर तो दीन इतना बिखर जाएगा कि हर बंदा अपनी मर्जी की चीज को दीन कहेगा कि क्या हरज है, चीज तो अच्छी है। रसूलों के जरिए दीन का तहफ्फुज़ कराया जाता था, तो बात यही है कि इल्म आयातुम बैशिनात में से है। हसन बसरी का एक कॉल है, अफसलुल इल्मी अल वरा वत्तफक्कुर। अफसल इल्म परहेजगारी और गौर व फिक्र का नाम है। तो हमारे यहाँ फिर जो इल्म की डेफिनेशन है उससे ये चीजें मुख्तलिफ थी ना। तालिब इल्मों को तर्जमा भी याद करवाया जाता है, उनको ग्रामर भी लिखवाई जाती है, तजवीद के रूल्स भी होते हैं, लेकिन याद रखिए ये सब मतलूब तक पहुंचने के रास्ते हैं, ये टूल्स हैं। असल काम जो इसके बाद होता है वो तकर्रुब इलल्लाह है और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, तज़किया नफ्स है। अब देखेंगे कि हम किस दर्जे का इल्म हासिल करते हैं। हर एक जहां भी खड़ा अपना मुहासबा करे, जितना पढ़ चुकी और जितनी बार पढ़ चुकी उसमें से क्या जहन में महफूज है और क्या कॉपियों में महफूज है, इससे ज्यादा अहम ये है कि अमल में क्या महफूज है और बातिन में उसका कितना रंग आया कि जो जाहिर पे भी नुमाया होने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म हकीकी हासिल करने वाला बना दे, वो इल्म जो हमारे दिल के तारों को छेड़ दे और जो हमारे अंदर आजसी पैदा कर दे, वो इल्म अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। दूसरा टॉपिक है उस दिन। कुरान पाक में आखिरत के बारे में ये कहा गया कि जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और लोग सजदा करने के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकेंगे। यौम युक्षफ़ु अन साक़िन व युदअउन इलस सुजूदि फला यस्ततीउन। सूरत क़लम की आयत है। यहाँ लफ्ज यक्षफ़ु अन साक़ है, तो कशफ़ साक़ पिंडली खोलने का लफ्ज इस्तेआरे के तौर पर है। इसका मतलब क्या है कि उस दिन सारी हकीकतें खुल जाएंगी जो मौजूदा दुनिया में इम्तिहान की मसलियत से छुपा दी गई थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इस आयत की तशरीह में कहा कि जब मामले से पर्दा हटा दिया जाएगा और तमाम आमाल जाहिर हो जाएंगे, ये मुराद है यौम युक्षफ़ु अन साक़ से। तो जरा सोचिए वो दिन कैसा दिन होगा कि जिस दिन हकीकतें खुलेंगी। आज लोगों की नजरों में हम क्या हैं और कल क्या बन जाएंगे। वो शख्स जो दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए या कोई ज़ाती फायदा हासिल करने के लिए दीनी जिंदगी इख्तियार करे वो झूठा दीनदार है, मगर दुनिया में ये हकीकत छुपी रहती है, इसलिए यहाँ झूठे दीनदार को भी वही इज्जत मिल जाती है जो सच्चे दीनदार को मिलनी चाहिए, मगर आखिरत में इस किस्म का फरेब मुमकिन ना होगा। आखिरत के बदले हुए हालात में ऐसे लोग बिल्कुल बेजगह हो जाएंगे। दुनिया में बनावटी बातें करके मकबूलियत हासिल करने वाले आखिरत में अपने आप को बेजुबान महसूस करेंगे, क्योंकि आखिरत में तमाम अहमियत सिर्फ पहले सदीक की होगी। और इस किस्म के कलाम के लिए वो लोग अपने आप को वहां ना अहल पाएंगे। मादी चीजों की बुनियाद पर बड़ाई हासिल करने वाले वहां छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आखिरत में सिर्फ रूहानी चीजों में अजमत होगी। दूसरी तमाम चीजें इस रोज अपनी अजमत खो देंगी। गैर हकीकी मसाइल का नारा लगाकर भीड़ जमा करने वाले वहां तन्हा हो जाएंगे, क्योंकि आखिरत में लोगों की तवज्जो का मरकज सिर्फ वो चीजें होंगी जो हकीकी तौर पर बामानी हैसियत रखती होंगी। सोचिए जरा, क्या मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ जिस दिन पिंडली खुलेगी? क्या मैं दुनिया में सजदे करती हूँ या फिर क़यामत के दिन मेरी कमर तख्ता बना दी जाएगी? क्या मैं लोगों की नज़रों में जो नज़र आती हूँ हकीकत में भी वैसी ही हूँ? क्या मैं ज़ाती फ़ायदों की खातिर दीन की ज़िंदगी तो इख्तियार नहीं किए हुई? क्या मैं झूठी दीनदार तो नहीं? क्या यहाँ जो इज्जत मुझको मिली है मेरे झूठे दीन की बुनियाद पर तो नहीं मिली? क्या आज दुनिया में मैं बनावटी बातें करके मकबूलियत हासिल करने की कोशिश तो नहीं करती? क्या मुझे इस बात का यकीन है कि क़यामत के दिन जुबान बंद हो जाएगी और सिर्फ सीधी सीधी बात चलेगी? क्या मैं नाअहली को अहलियत तो साबित नहीं करती? क्या मैं आज मादी चीज़ों की वजह से दूसरों को बड़ा तो नहीं समझती? क्या मैं गैर हकीकी मसाइल के नारे लगाकर अपने इर्द गिर्द लोगों की भीड़ तो जमा नहीं करती? सोचेंगे तो यकीनन मजीद सोचने को दिल चाहेगा और अपना असल चेहरा देखने को दिल चाहेगा। शर्त यह है कि हम इस दुनिया में अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सकें। दुनिया में इंसान सच्चाई को नज़रअंदाज करके ऊंचे मुकामात पाता है, आखिरत में सच्चाई का एतराफ़ करने वाला ऊंचे मुकामात को पाएगा। दुनिया में ख़यानत करके इंसान माल का मालिक बनता है, आखिरत में दयानत और अमानत वो चीज़ होगी जो इंसान को साहिब सरमाया बनाए। दुनिया में इंसानों को खुश करके मुफादात हासिल होते हैं, आखिरत में अल्लाह ताला को खुश करना इंसान को तमाम मुफादात का मालिक बनाएगा। हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें और दुआ भी करें कि अल्लाह हमारे बातिन को हमारे जाहिर से अच्छा कर दे। और आज इस दुनिया की तरक्की ही को सारी चीज न समझें, यहाँ अपने आप को अच्छा समझकर इस गलत फहमी का शिकार न हो जाएं कि हम वहाँ भी अच्छे ही होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे और हमें रब्बानी बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।